हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। आज विदुर जी उद्धव से प्रश्न पूछेंगे, तो हम श्लोक नंबर 25 से प्रारंभ करेंगे, भगवान की इच्छा से जितना भी पढ़ सके। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न पर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर दरुणबिंबफल दरोष्टा उरणेन्दुसुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र स्यपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्णगोविन्दहरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवेऽपि वस्वा मृतुमेतदेव गोविंद धामो धरमाधवेति मर्हापीरं नटवरवपोकर्णियो कर्णिकारं बिभ्रात्वा सह कनकपिशं वैजन्तीं च माल्यं रन्ध्रार्वेणोर् अधरसुदया पूर्णयोगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत्कीर्तकीर्ति जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय चित जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हमने पढ़ा कि विदुर जी को जब हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा तो उनको कोई खेद नहीं हुआ, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि अलग अलग तीर्थों में जाकर भगवत दर्शन किया जाए, और उन्होंने प्रत्येक तीर्थ स्थल में बहुत ही सुंदर रीति से भगवान के दर्शन किए। और इस तरह से दर्शन करते हुए अंत में वे यमुना के तट पर पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तो आज हम उद्धव और विदुर जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, और विदुर जी क्योंकि इतने समय से वो तीर्थयात्रण कर रहे थे और किसी के साथ कोई संपर्क तो था नहीं जो उन्हें बताते कि हस्तिनापुर में क्या हो रहा है या द्वारिका में क्या हो रहा है, इसके बीच में जब वो तीर्थों पे गए थे, इस बीच में कितना कुछ घट चुका था। इतना बड़ा महाभारत हो गया था, यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया था, कुछ भी नहीं पता था। तो क्योंकि इतने समय के बाद कोई एक व्यक्ति हमारा जानने वाला उन्हें मिला है, भगवान का भक्त, तो वो क्या पूछते हैं उनसे, क्या क्या प्रश्न हैं, तो आज हम उन प्रश्नों को सुनेंगे, विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सुनेंगे। और एक भगवान का भक्त जब किसी से मिलता है तो वो किसके विषय में क्या पूछता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से पता चलेगा। मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए श्लोक नंबर 25। सवासुदेवा नुचरम प्रशांतम बृहस्पति प्राक्तनायम प्रतीतम आलिंग्य गाणम प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छत् भगवत् प्रजानाम। स वासुदेवानुचरम प्रशान्तम बृहस्पति प्राक्तनायम प्रतीतम आलिंग्य गाढ्यम प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छत् भगवत् प्रजानाम। शब्दार्थ, स वासुदेव अनुचरम प्रशांतम, स मन वह विदुर, वासुदेव कृष्ण का अनुचर नित्य संगी प्रशांतम अत्यंत शांत एवं सौम्य, बृहस्पति प्राप्त प्रतीतम, बृहस्पति यानी देवताओं के महान गुरु बृहस्पति का प्राक अर्थात पूर्व काल में, तनयम पुत्र या शिष्य, आलिंग्य गाढ़म प्रणयेन भद्रम, आलिंग्य गाढ़म मान उनको आलिंगन करके, गाढ़ यानी गहराई से, प्रणयेन प्रेम से, भद्रम यानी शुभ, स्वनाम पृच्छ भगवत प्रजानम, स्वनाम यानी निजी प्रच्छत पूछा भगवत भगवान के प्रजानम परिवार का। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे, अतएव जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया। क्योंकि उद्धव छोटे थे अतएव पुत्र तुल्य थे, विदुर के भाई पांडव कृष्ण के फूफा थे और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे, अतएव सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु तथा परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात। यहाँ शिला प्रभुपाद जी हमें पहले बता रहे हैं कि किस तरह से छोटों से बड़े मिलते हैं और बड़ों को किस तरह से छोटों के साथ मिलना चाहिए। उद्धव जो थे वो छोटे थे और विदुर जो थे उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे। भले ही वो बृहस्पति के शिष्य थे, बड़े महान थे, भगवान के चचेरे भाई थे, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा सामाजिक लेवल बड़ा है तो हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलें, आयु में जो बड़े हैं हमसे, उनसे मिलें तो हम उन शिष्टाचारी बोल जाएं। हालांकि उद्धव जो थे वो देखा जाए तो उनकी पदवी बहुत बड़ी थी क्योंकि वो भगवान के नित्य संगी थे, परंतु फिर भी जब उन्होंने विदुर जी से मिले तो उनको चरण स्पर्श किया, उनको प्रणाम किया। लेकिन विदुर जी भी जानते थे कि छोटों से कैसे मिलना है, तो उन्होंने कैसे किया, आलिंग्य गाढ़म प्रणयेन, आलिंग्य गाढ़म, उन्हें बहुत ही प्रेम से आलिंगन किया और पूछा क्या, उनसे कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। सबसे पहले भक्त की यही इच्छा होती है, भगवान से संबंधित बात करते हैं वो, इसलिए आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा, यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। यह जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आघात था, इसीलिए उन्होंने अति उत्कंठावश पुनः पूछा। उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यावहारिक नहीं थी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्योंकि ये बहुत दुखद समाचार था और इतने समय के बाद उनको उद्धव जी से उनकी भेंट हुई थी, तो पहले ही उन्होंने क्या पूछा, कृष्ण के परिवार के विषय में पूछा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ये वाकई में ऐसा है, ऐसा हुआ है कि अब कोई नहीं रहा। तो पूछते हैं, भगवान का भक्त जब भी कुछ पूछना चाहता है तो भगवान के विषय में पहले पूछना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सुरक्षित हैं, भगवान संतुष्ट हैं, तभी कोई जीव संतुष्ट हो सकता है। इसीलिए विदुर जी उद्धव से सबसे पहले कृष्ण बलराम के विषय में पूछते हुए कहते हैं, कच्चित् पुराण पुरुषासनाभ्य पाद्यानुवृत्ति तेह केलावतीर्ण आसात उर्व्या कुशलम विधाय कृतक्षण कुशलम शूरगे कच्चित् पुराण पुरुषासनाभ्य पात्मानुवृत्तेह केलावतीर्ण आसात उर्व्या कुशलम विधाय कृतक्षण कुशलम शूरगे कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य। कच्चित् क्या, पुराणो यानी आदि पुरुषो यानी दो भगवान कृष्ण तथा बलराम, पुराणो पुरुषो मतलब दो कृष्ण बलराम, स्वनाभ्य अर्थात ब्रह्मा पद्मा अनुवृत्या कमल के कमल से उत्पन्न होने वाले के अनुरोध पर, यानी ब्रह्मा जी के अनुरोध पर जो दो भाई इस भौतिक जगत में प्रकट हुए थे, वे यहाँ पर किल यानी निश्चय ही अवतरित हुए थे, आस्ते हैं। और उरिया का मतलब होता है जगत में कुशलम, अब इस जगत में वो कुशलम हैं, अच्छे से हैं। विधाय यानी ऐसा करने के लिए, कृतक्षणों कुशलम शूरगे, कृतक्षणों हर एक की प्रसन्नता के उन्नायक, और कुशलम यानी सर्वमंगल, शूरगे है यानी शूरसेन के घर में, क्योंकि भगवान के प्रसन्नता और भगवान की संतुष्टि पर ही प्रत्येक जीव की संतुष्टि निर्भर करती है। इसलिए पहले मुझे ये बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उत्पन्न हुए हैं, वो शूरसेन के घर में कुशल से हैं? अनुवाद देखिए, कृपया मुझे बतलाइए कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता की वृद्धि की, शूरसेन के घर में ठीक से तो हैं? उनका पहला प्रश्न है, वो भगवान के विषय में जानना चाहते हैं कि कृष्ण संतुष्ट तो हैं, कृष्ण ठीक से तो हैं। क्योंकि एक भक्त बस भगवान की संतुष्टि चाहता है, वो जानता है कि जब कृष्ण संतुष्ट होंगे तो पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो सकता है। इसलिए उद्धव से और किसी के विषय में पूछने से पहले वो कृष्ण की प्रसन्नता के विषय में पूछते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण तथा बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं हैं, ईश्वर अद्वितीय है, किंतु वे अनेक रूपों में जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं अपना विस्तार करते हैं। कृष्ण बलराम एक ही हैं। वो उन दोनों में यदि कोई अंतर है तो बस इतना है कि कृष्ण सांवरे हैं और बलराम गोरे हैं। तो भगवान एक ही है, भगवान दो नहीं होते हैं, लेकिन भगवान अपने ही अंदर से प्रकट अपने आप को विस्तार करते हैं। ये सभी स्वांश होते हैं, स्वांश मतलब भगवान के अंश होते हैं। कृष्ण के निकटतम अंश बलदेव हैं और गर्भोदशा विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के विधि विधान ब्रह्मा बलदेव के अंश हैं। यह सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलदेव पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते हैं, उल्टे सारा ब्रह्मांड उनके अधीन है। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्यों द्वारा संसार को इससे छुटकारा दिलाया, जिससे हर व्यक्ति सुखी तथा संपन्न हो सका। भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है। अतएव विदुर ने सबसे पहले भगवान की कुशल क्षेम पूछी। उसके उपरांत विदुर जी कहते हैं, कच्चित कुरुणां परमं सुहृणो भामास आस्ते सुखमंगशारे यो वै स्वश्रीणां प्रीतिवत्थधाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चित् कुरुणां परमः सुहृणो भामास आस्ते सुखमंगशारे यो वै स्वश्रीणां प्रीतिवत् दधाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चित् कुरुणां परमं सुहृणो। कच्चित् मना क्या, कुरुणां कुरुओं के, परमं सबसे बड़े सुहृद यानी शुभ चिंतक, न यानी हमारा, भामस आस्ते सुखमंगशौरी। भामा मतलब बहनोई, मेरे बहनोई वसुदेव जी, सह यानी वह आस्ते हैं, सुखम सुखी अंग, हे उद्धव मेरे बहनोई वसुदेव के विषय में बताओ क्या वो सुखी हैं। यो वै ससरणी ससरणाम प्रतिवत दाति यो यानी जो वै निसंदेह ससरणाम बहनों का प्रतिवद यानी पिता के समान ददाती देता है। वारान यानी इच्छित वस्तुएं, अपने बहनों को पिता के समान प्रेम करता है। और वदान्यो वर तर्पणेना, वदान्य मना अत्यंत ही उदार, वरा यानी स्त्री, तर्पणे यानी प्रसन्न करके। एक पुरुष के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अप जो उनसे छोटी बहनें होती हैं या उनकी बहनें जो होती हैं उनके साथ वो पिता की तरह व्यवहार करें और अपनी पत्नियों के साथ वो किस तरह से सुंदर व्यवहार करें, इसी से एक पुरुष की के कुशल व्यवहार का पता चलता है। तो इसी तरह से उद्धव जी विदुर जी उद्धव जी से कहते हैं, कृपया मुझे बताइए कि कौरवों के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव कुशलतापूर्वक तो हैं, वे अत्यंत दयालु हैं, वे अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। तो वो कैसे बहनोई हैं श्रील प्रभुपाद जी हमें बताएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की 16 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम पौरवी या रोहिणी था, जो बलदेव की माता थी और विदुर की बहन थी। तो ये जो रोहिणी माता थी वो विदुर जी की बहन थी, इसलिए वसुदेव विदुर जी की बहन के पति थे और वे दोनों साले बहनोई थे, है ना। वो बहन के पति हैं तो साले बहन, और उसके साथ ही क्या, वसुदेव की बहन कुंती विदुर के बड़े भाई पांडव की पत्नी थी और इस तरह से भी वसुदेव विदुर के साले थे। कुंती वसुदेव से छोटी थी और बड़े भाई का कर्तव्य है कि वह अपनी छोटी बहनों को पुत्रियों के समान माने। जब भी कुंती को किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती थी तो वसुदेव अपनी छोटी बहन के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसे उदारता पूर्वक प्रदान करते थे। वसुदेव ने अपनी पत्नियों को कभी असंतुष्ट नहीं होने दिया और साथ ही साथ वे अपनी बहन को इच्छित वस्तुएं प्रदान करते रहे। वे कुंती का विशेष ध्यान रखते थे क्योंकि वे अल्प आयु में ही विधवा हो चुकी थी। वसुदेव की कुशलता पूछते समय विदुर को ये सारी बातें तथा पारिवारिक संबंध स्मरण हो आए। वसुदेव जी के विषय में पूछने के बाद वे प्रद्युम्न के विषय में पूछते हुए कहते हैं, कश्चित् वरुथाधिपत् पत्रीयदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीर यम रुक्मणि भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रांस मरमादि सर्गे। कश्चित् वरुथाधिपतेर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीर यम रुक्मणि भगवतो विलेबे आराध्य विप्रांस मरम आराध्य विप्रांस मरमादि सर्गे। कच्चित् वरुथानि वरुथादि पतिर यदुनाम, कच्चित् मना क्या, वरुथ यानी सेना का अधिपति नायक यदुनाम यदुओं का, प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीर, प्रद्युम्न यानी कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न आस्ते है सुखम यानी सुख से अंग है उद्धव वीर महान योद्धा। यम रुक्मणी भगवतो बीलेबे, यम मना जिसको रुक्मणी कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने भगवान भगवान के अभिलेबे पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किया था। आराध्य विप्रां मरमादि सर्गे, आराध्य मने प्रसन्न करके विप्रान ब्राह्मणों को स्मरम कामदेव आदि सर्गे, अपने पूर्व जन्म में जो कामदेव थे उसको भगवान की पत्नी रुक्मणी ने बहुत ब्राह्मणों को प्रसन्न करके पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। क्या वो सुख से तो है, अनुवाद देखिए। हे उद्धव मुझे बताओ कि यदुओं का सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है। रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जीव गोस्वामी के अनुसार स्मरा यानी कामदेव भगवान कृष्ण के नित्य संज्ञों में से हैं। इसकी व्याख्या उन्होंने अपने भाष्य कृष्ण संदर्भ में विस्तार से की है। तो श्री रूपा जी बता रहे हैं कि कामदेव भगवान के नित्य संगी हैं और इसकी व्याख्या श्री राजीव गोस्वामी ने की है। तो उसके विषय में विदुर जी पूछने के बाद महाराजा शूरसेन के विषय में पूछते हैं। वे कहते हैं कचित सुखम सात्वत ऋषि भोज दाशार्ह कारणा मधि पास आस्ते यामभ्यषिञ्चत पत्र नेत्रो नृपासनाशाम परिहृत्य दूरात् कचित् सुखम सात्वत ऋषि भोज दाशार्ह कारणामधिप स आस्ते यमभ्यषिञ्चत पत्र नेत्रो नृपासनाशाम परिहृत्य दूरात् कच्चित् सुखम सात्वत विष्णु भोज कच्चित् मना के आसुखम सुख कुशल मंगल से हैं। सात्वत अर्थात सात्वत जाति विष्णु विष्णु यानी विष्णु वंश भोज यानी भोज वंश दाशार्क कारण अधि प स अस्ते दाशार्क कारण यानी दाशार्ह जाति अधिप राजा उग्रसेन अधिप मना उग्रसेन राजा स आस्ते वे हैं। यम जिसको अभ्यषिंचत यानी प्रतिष्ठित शतपत्र नेत्र श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण को शतपत्र नेत्रे कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर कमल की तरह उनके नेत्र हैं। और नृप आसन यानी आशाम यानी राज सिंहासन की आशा परिहृत्य ताक कर दूरा वैसे तो महाराजा शूरसेन ने तो राज की आशा ही छोड़ दी थी लेकिन भगवान ने उनको पुनः प्रतिष्ठित किया। अब विदुर जी उद्धव से वे पूछते हैं हे मित्र मुझे बताओ कि क्या सात्वतों यानी वृष्णियों भोजों तथा दाशार्हों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल से तो हैं। वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे किंतु भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। आगे विदुर जी पूछते हैं भगवान के पुत्र सांब सुरक्षित तो हैं। वे पूछते हैं कचिद्धरे साम्य सुत सदृक्ष आस्ते ग्रणीराथि नाम साधु सांब असूतयम जाम्बवती व्रताड्या देवं गुहं योम्बिकाया त्रितोग्रे कचिद्धरे सौम्य सुत सदृक्ष आस्ते गृणीरथिनां साधु सांब असूतयम जाम्बवती व्रताड्या देवं गुहं योम्बिकाया त्रितोके कचित धरे सौम्य सुत सदृक्ष कचित क्या हरे हरे मना भगवान का सौम्य हे गंभीर सुत पुत्र सदृक्ष उनके समान पुत्र के समान ही है साम आस्ते ग्रणी रथी नाम साधु सांब आस्ते मने ठीक से रह रहा है अग्रणी यानी अग्रणीय रथी नाम योद्धाओं में साधु अच्छे आचरण वाला सांब सांब असुत असुत यम जाम्बवती व्रताड़िया असुत का मतलब है जन्म दिया यम जिसको जाम्बवती कृष्ण की पत्नी जामवंती ने व्रताड़िया व्रतों से संपन्न देवं गुहम योम्बिकाया कृत देवं देवता गुहम कार्तिकीय नामक यह जिसको अम्बिकया शिव की पत्नी से धृत उत्पन्न अग्रे पूर्व जन्म में अनुवाद देखिए हे भद्र पुरुष साम ठीक से तो है वह भगवान के पुत्र सदृश ही है पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकीय के रूप में जन्मा था और अब वही कृष्ण की अत्यंत ही सौभाग्यशाली पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के तीन गुण अवतारों में शिव भगवान के स्वांश हैं। उनसे उत्पन्न कार्तिकेय भगवान कृष्ण के अन्य पुत्र प्रद्युम्न के ही समक्ष हैं। जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके सभी स्वांश भी उनके साथ उनके विभिन्न कार्यों को प्रकट करने हेतु उत्पन्न होते हैं, किंतु वृंदावन की लीलाओं के अतिरिक्त भगवान के सारे कार्य उनके विभिन्न स्वांशों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जब संसार में आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, उनके सारे स्वांश हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव, संकर्षण, वो सब उनके साथ ही आते हैं। और वो सारे जितने भी भगवान के कार्यकलाप हैं वही संपन्न करते हैं। सिर्फ वृंदावन की जो गुह्य लीलाएं हैं जो वो भगवान स्वयं करते हैं। वासुदेव नारायण के स्वांश हैं, अतः जब भगवान देवकी तथा वसुदेव के समक्ष वासुदेव रूप में प्रकट हुए तो वे अपने नारायण के रूप में ही प्रकट हुए। इसी तरह स्वर्ग के सारे देवता प्रद्युम्न, सांब, उद्धव इत्यादि भगवान के संगियों के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक से यह समझा जा सकता है कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय सांब के रूप में और वसुओं में से एक वसु उद्धव के रूप में प्रकट हुए। इन सबों ने भगवान की लीलाओं को संवर्धित करने के लिए विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की। श्रील प्रभुपाद की जय। विदुर जी युधान के विषय में पूछते हुए कहते हैं, क्षेमं सकचित् युयुधान अस्ते सफाल गुणालब्ध धनुर्रहस्य लेबेंज साधोक्षज सेव यैवा गतिं तदीयं यति भेदुरापां क्षेमं च कच्चित् युयुधान अस्ते यः फाल्गुणाल्लब्ध धनुर्रहस्य लेबेंज साधोक्षज सेवयैव गतिं तदीयं यति भेदुरापां क्षेमं च कच्चित् युयुधान अस्ते। क्षेमं यन सर्वमंगल स वह कच्चित् क्या युयुधान यानी सात्विकी अस्ते है यह फाल्गुनाल लब्ध धनु रहस्य यह जिसने फाल्गुनाथ अर्जुन का एक नाम फाल्गुनाथ है अर्जुन से लब्ध प्राप्त किया धनु रहस्य सैन्य कला के भेदों का ज्ञान जानकर यानी के रहस्य जो सेना के हैं सैन्य कला के वो उन्होंने अर्जुन से सीखे थे। लेबेंज साधोक्ष जैसे सेव लेभे यानी प्राप्त किया अंजसा बलि बंती अधोक्षज ब्रह्मा का सेव्य सेवा से एव उन्होंने अर्जुन से युद्ध कला सीखा और ब्रह्मा जी से किस तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए वो सारे रहस्य सीखे। गतिम तदीयम यति भेदुराप गतिम यानी गंतव्य तदीयम देव्य यति भी बड़े बड़े सन्यासी द्वारा दुरापा प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। तो उनको वो भगवान की भक्ति प्राप्त थी जो बड़े बड़े सन्यासी जो हैं उनको भी प्राप्त नहीं है। ऐसे युयुधान यानी सात्विकी के विषय में आप बताइए। अनुवाद, हे उद्धव क्या युयुधान कुशल से हैं? उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंचते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर उद्देश्य बताएंगे कि जीव का क्या उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक का गंतव्य है भगवान अधोक्षज का जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं पार्षद बन जाना, ये आध्यात्मिक का गंतव्य है। हम आज आध्यात्मिक रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं और हमें अपने लक्ष्य के विषय में पता होना चाहिए। कि हमको भगवान के पार्षद बनना है, भगवान की किसी निजी सेवा में जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास और उस अपने दासत्व के स्थान पर पहुंचना है। वैसे तो जीव दास ही है, संसार में रहेगा तो माया का दास होगा, लेकिन जब वो आध्यात्म के पथ पर उठता है तो उसको भगवान के दासत्व तक पहुंचना है, भगवान का पार्षद बनना है। ब्रह्म सुख का आनंद प्राप्त करने के लिए सन्यासी लोग समस्त सांसारिक संबंधियों को यथा परिवार, पत्नी, संतान, मित्र, घर, संपत्ति को त्याग देते हैं, किंतु अधोक्षज सुख ब्रह्म सुख से बढ़कर है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ब्रह्म सुख मतलब ब्रह्म के अंदर एकाकार हो जाना, लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते सन्यासी लोग तो उस ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, परिवार, पत्नी, संतान, मित्र, घर, संपत्ति, लेकिन अधोक्षज भगवान के सेवा का जो सुख है, जो भगवान के पार्षद बनने का जो सुख है, वो ब्रह्म सुख से कहीं ज़्यादा है। और ज्ञानी जन परब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन करते हुए आनंद के दिव्य गुण का भाग करते हैं, किंतु इस आनंद के परे वह सुख है जिसका भोग भगवान का नित्य स्वरूप ब्रह्म करता है। जीवों द्वारा ब्रह्मानंद का भोग भवबंधन से मोक्ष पाने के बाद ही हो पाता है, किंतु परब्रह्म अपनी ही शक्ति का, जिसे हिलादनी शक्ति कहते हैं, नित्य आनंद भोग करता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हम जब तक इस भौतिक जगत में हैं तब तक तो उस ब्रह्म सुख को, भगवत भक्ति के उस आगाढ़ प्रेम को हम तब तक ग्रहण नहीं कर पाते। उसके लिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसका भोग भगवान का नित्य स्वरूप ब्रह्म करता है, जीवों द्वारा ब्रह्मानंद का भोग भवबंधन से मोक्ष पाने के बाद ही प्राप्त होता है। भवबंधन से जब मुक्ति हो जाती है तभी उसको प्राप्त, लेकिन वही भगवान परब्रह्म अपनी ही शक्ति का, जिसे हिलादनी शक्ति कहते हैं, नित्य आनंद भोग करता है। ज्ञानी जो कि बाह्य गुणों के निषेध द्वारा ब्रह्म का अध्ययन करता है, ब्रह्म की हिलादनी शक्ति के को नहीं समझ सकता, ज्ञानी नहीं समझ सकता इसको, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो जान सकता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे एक सुंदर बात बताते हैं कि सर्वशक्तिमान की अनेक शक्तियां हैं, शक्तियों में उनकी अंतरंग शक्ति के तीन स्वरूप हैं, ये हैं संवित, संदिनी तथा हिलादिनी। महान योगी तथा ज्ञानी जन यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा तथा प्राणायाम के नियमों का दृढ़ता से पालन करने पर भी भगवान की अंतरंग शक्ति में प्रवेश नहीं कर पाते, किंतु भगवत भक्तों को भक्ति के बल पर इस अंतरंग शक्ति की अनुभूति सहज ही हो जाती है। युयुदान जीवन की इस अवस्था को उसी तरह प्राप्त कर चुके थे जिस तरह उसने अर्जुन से सैन्य विज्ञान का पटु ज्ञान प्राप्त किया था, इस तरह उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से सर्वथा सफल था। भगवान की भक्ति का यही मार्ग है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जब जीव भगवान की भक्ति, प्रेममयी भक्ति में आगे बढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी जो क्षेत्र हैं उसमें आगे प्रगति नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति उसे हर जगह पर सफलता प्रदान करती है, इसलिए जीव को अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए। जब जीव इस तरह से करेगा तो उसका ये भौतिक जगत में रहना भी सफल होगा और फिर इस भौतिक जगत के जाने के बाद भगवत पार्षद बन सकेगा, जिससे उसका आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य उसे प्राप्त होगा। आगे उद्धव विदुर जी अक्रूर के विषय में पूछते हैं और बहुत ही सुंदर उनका परिचय देते हुए कहते हैं, कच्चित् बुधः स्वस्य नामीय अस्ते श्वफल्क पुत्रो भगवत् प्रपन्ना यः कृष्ण पादांकित मार्ग पांसुः वचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्यः। काचित् बुधा स्वास्थ्य नामीव आस्ते श्वाफल्कपुत्रो भगवत् प्रपन्ना या कृष्ण पादांकित मार्ग पांसो वाचेष्टतम प्रेम विभिन्न धैर्य क्वचित बुद्ध क्वचित मन क्या बुद्ध मन अत्यंत ही विद्वान स्वस्ति यानी ठीक से हैं अनमीव यानी त्रुटि रहित आस्ते हैं शफल का पुत्र अक्रूर भगवत प्रपन्न भगवान के शरणागत है यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांसो यह कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण के पादांकित चरण चिन्हों से शोभित मार्ग यानी रास्ता पांसुषु यानी धूल से अचेष्टता प्रकट किया प्रेम विभिन्न अर्थात दिव्य प्रेम में निमग्न धैर्य मानसिक संतुलन अनुवाद देखिए कृपया मुझे बताइए कि श्वफल्क पुत्र अक्रूर ठीक से तो हैं वह भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्ह अंकित थे श्री प्रभुपाद की जय श्री प्रभुपाद जी अक्रूर जी के विषय में बहुत सुंदर बताते यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि विदुर जी पूछ रहे हैं सबके विषय में और इनडायरेक्टली वो भगवान के साथ संबंधित हैं क्योंकि वो भगवान से कितना प्यार करते हैं हर अभी अक्रूर जी के विषय में और कामदेव यानी प्रद्युम्न के विषय में साम के विषय में वो सब कृष्ण के हैं इसीलिए महत्वपूर्ण है वो सब कृष्ण से प्रेम करते हैं इसीलिए महत्वपूर्ण है तो अक्रूर जी के विषय में वो कहते हैं श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जब अक्रूर कृष्ण की खोज में वृंदावन आए थे तो उन्होंने नंदग्राम की धूल में भगवान के चरण चिन्ह देखे और वे भाव आवेश में तुरंत ही उन पर गिर पड़े यह भाव उसी भक्त में संभव है जो कृष्ण के सतत विचारों में पूर्णतया निमग्न हो भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त स्वभावतः दोष रहित होता है क्योंकि वह परम पुरुष से शुद्ध भगवान से सदैव संबंधित रहता है तो इतना बड़ा सेनापति होकर जब धूल में भगवान के चरण को अंकित देखा तो उसमें लौटने लगा आज कोई साधारण थोड़ा सा बड़े स्तर का व्यक्ति होगा क्या ऐसा करेगा लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है क्योंकि वो सदैव भगवान के विचारों में लगा रहता है इससे उनका हृदय इतना शुद्ध होता है और वो पूर्णतया भगवान में निमग्न रहता है भगवान का निरंतर ध्यान करना भौतिक गुणों के दोषण से श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि यह भाव उसी भक्त में संभव है जो कृष्ण के सतत विचारों में पूर्णतया निमग्न हो भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त स्वभावतः दोष रहित होता है क्योंकि वह परम रूप से शुद्ध भगवान से सदैव संबंधित रहता है भगवान का निरंतर ध्यान करना भौतिक गुणों के दूषण से अपने को मुक्त रखने की प्रति संदूषण विधि है जीव को जो भौतिक दूषण है भौतिक अपवित्रता है उसे साफ रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि भगवान से निरंतर भगवान का ध्यान करना चाहिए और निरंतर भगवान का ध्यान कैसे होगा जब हम भक्तों का संग करेंगे भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सोचते रहने के कारण सदैव उनकी संगति में रहता है तो भी देश तथा काल के विशेष संदर्भ में दिव्य भावनाएं विभिन्न मोड़ लेती हैं और इससे भक्त का मानसिक संतुलन डगमगा जाता है भगवान चैतन्य ने दिव्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया जैसा कि ईश्वर के इस अवतार के जीवन में हम समझ पाते हैं तो साधारणतया क्या होता है कि जीव भगवान से कितना भी प्रेम करता है उनके विषय में ध्यान करता है लेकिन भौतिक जो सर्कमटेंसेस हैं उनके कारण उसका ध्यान कभी कभी डगमगा जाता है लेकिन किस तरह से भगवान के भाव में सदैव रहना है, उसका उदाहरण स्वयं भगवान जब भक्त के स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में दुनिया में प्रकट हुए तो उन्होंने अपने जीवन से हमें ऐसा समझाया कि भक्त को किस प्रकार प्रत्येक क्षण, वो तो जब जब यम किसी भी नदी को देखते थे, समुद्र को देखते थे तो जोर से चिल्ला उठते थे यमुना, किसी पत्थर को देखते थे तो उनको गोवर्धन का स्मरण आता था, किसी भी वस्तु को देखकर कृष्ण का स्मरण आ जाए, यही भक्ति की प्रगाढ़ता है कि हर समय जीव जो है वो भगवान कृष्ण के स्मरण में हो। रास्ते से कभी जा रहे हो, कोई एक अच्छा सा फूल दिखे तो कैसा लगे, काश ये फूल मैं भगवान के चरणों में चढ़ा सकूँ। कभी फूलों के हार दिखें तो हमें लगे कि हम अपने भगवान के इन भगवान को इन हारों से सजाएं, तो कोई भी चीज़ जो हम देखें तो फौरन से हमें अपने भगवान का स्मरण आ जाए, यही भक्ति की उन्नति है। आगे विदुर जी उद्धव से देवकी मैया के विषय में पूछते हैं, वे कहते हैं क्वचित छवम देव कभोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातु यावै स्वगर्भेण दधार ए देवं त्रयी यथा यज्ञवीतानमर्थं कच्चिच्छवं देव कबोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातु यावै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवीतानमर्थ क्वचित शवम देवक भोजपुत्र्या। क्वचित क्या, शिवम ठीक ठाक है, देवक भोजपुत्र्या राजा देवक भोज की पुत्री का, विष्णु प्रजा इव देव मातुर, विष्णु प्रजा यानी भगवान को जन्म देने वाली इव सदृश देव मातु देवताओं की माता अदिति का, या वै स्वगर्भेण दधार देवम, या जो वै निसंदेह स्वगर्भेण अपने गर्भ में ददार धारण किया देवम यानी भगवान को, और त्रयी यथा यज्ञवीतानमर्थ, त्रयी यानी वेद, यथा जितना कि यज्ञवीतान यज्ञ के प्रसार का अर्थम उद्देश्य है। बहुत ही सुंदर, वेदों के साथ देवकी मैया को तुलना करते हुए विदुर जी उद्धव जी से कहते हैं जिस तरह सारे वेद यागिक कार्यों के आगार हैं उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, क्या वह देवकी कुशल से हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सारे वेद देवी ज्ञान तथा आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण है। इस तरह भगवान कृष्ण की माता देवकी ने वेदों के साक्षात अर्थ रूप में भगवान को अपने गर्भ में धारण किया था। वेदों में तथा भगवान में कोई अंतर नहीं है, वेदों का उद्देश्य भगवान को समझना है और भगवान साक्षात वेद हैं। देवकी की तुलना अर्थपूर्ण वेदों से की गई तथा भगवान की तुलना उनके उद्देश्य से की गई है। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान के स्वांश पार्षद अनिरुद्ध के विषय में पूछते हुए वे कहते हैं अपि स्विदास्ते भगवान सुखम वो यह सात्वतम काम दुखो निरुद्ध यमामनन्ति स्म हि शब्द योनि मनोमयं सत्वतुरि यतत्वम् अपि स्वदास्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतं कामदुघो निरोध यमामनन्ति स्म हि शब्दयोनिं मनोमयं सत्वतुरि यतत्वम् अपि स्वति अपि स्वदास्ते भगवान् मुखम् अपि यानी भी क्या, स्वस्ति यानी क्या, आस्ते है भगवान, भगवान सुखम समस्त सुख वह तुम्हारा यह जो सात्वतम, यह सात्वतम काम काम दुघो निरोध, सात्वतम यानी भक्तों की काम दुख यानी समस्त इच्छाओं का स्रोत अनिरुद्ध, स्वांश अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जो के भक्तों के समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए काम दुख की तरह है। यमामनंती स्म ही शब्द योनि, यम यानी जिसको, अमानंती यानी स्वीकार करते हैं, स्म प्राचीन काल से ही निश्चय ही शब्द योनि यानी ऋग्वेद का कारण। मनोमयम सत्वतुरी यतत्वम, मनोमयम मतलब मन का सृष्टा, सत्व दिव्य, तुरीय यानी चौथा विस्तार, तत्वम यानी तत्व सिद्धांत। अनुवाद, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलतापूर्वक है, वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण, मन का सृष्टा तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आदि चतुर्भुज व्यूह बलदेव के आदि अंश, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, ये सभी विष्णु तत्व हैं। श्री राम के अवतार में ये सारे के सारे अंश विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट हुए। भगवान राम आदि वसुदेव हैं और संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध उनके भाई थे। अनिरुद्ध महाविष्णु के कारण भी हैं, जिसके श्वास से ऋग्वेद प्रकट हुआ। मार्कंडेय पुराण में इसकी सुंदर ढंग से व्याख्या हुई है। भगवान कृष्ण के अवतार में अनिरुद्ध उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। द्वारिका में भगवान कृष्ण आदि व्यूह के वासुदेव अंश हैं। आदि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन कभी नहीं छोड़ते। समस्त स्वांश एक ही विष्णु तत्व है और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। और इनके अलावा जितने भी भगवान के मुख्य सेवक हैं, उनके विषय में पूछते हुए विदुर जी उद्धव से कहते हैं, अपि स्वदन्ये च निजात्मदेवम् अनन्य वृत्त्या समनोव्रताये हृदिक सत्यात्मज चारुदेशणा गदा दया स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वदन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनोव्रताये हृदिक सत्यात्मज चारुदेशणा गदा दया स्वस्ति चरन्ति सौम्य। शब्दार्थ, अपि स्वति, अपि मना भी, स्वति अर्थात क्या, अन्य दूसरे, च तथा, निज आत्मदेवम अपने ही देव यानी कृष्ण, अनन्य यानी पूर्ण रूप है ना, वृत्त्या यानी श्रद्धा से, समनुव्रता यानी अनुयायी गण, ये जो वे जो हैं, रिदिक सत्यात्मज चारुदेश, रिदिक यानी ऋदिक, सत्यात्मा यानी सत्यभामा का पुत्र, चारुदेश, चारुदेश, गद गद, गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम, आदय यानी और जितने भी हैं स्वस्ति कुशलतापूर्वक हैं, चरन्ति समय बिताते हैं, सौम्य हे भद्र पुरुष। अनुवाद, हे भद्र पुरुष उद्धव, अन्य लोग यथा ऋदिक, चाणुदेश, गद तथा सत्यभामा का पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो हैं। भगवान के समस्त परिवारजनों के विषय में और भगवान के विषय में पूछने के उपरांत अब विदुर जी उद्धव से युधिष्ठिर महाराज के विषय में पूछते हुए कहते हैं, अपि स्वदुर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्म परिपाति सेतुम दुर्योधनोताप यत सत्यभामा दुर्योधनोताप्यत सत्सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। आपि स्वदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्म परिपाति सेतुम् दुर्योधनोताप्यत सत्सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्याम्। अपि स्वदोभ्याम विजयाच्युताभ्याम, अपि मन भी स्व दोभ्याम यानी अपनी भुजाएं, विजय अर्जुन अच्युताभ्याम श्री कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण जिनकी दो भुजाएं हैं, धर्मेण धर्म परिपाति से, धर्मेण धर्म धर्म के द्वारा, धर्म यानी धर्मराज युधिष्ठिर परिपाति पालन पोषण करते हैं, सेतुम धर्म का समान, और दुर्योधनों यानी दुर्योधन उत्पतया ईर्ष्या करता था, यत जिसका सभायाम राज दरबार में साम्राज्य लक्ष्य विजयानुवृत्त, साम्राज्य यानी राजसी, लक्ष्म्या यानी ऐश्वर्य, विजय अनुवृत्त्या अर्जुन की सेवा द्वारा। अनुवाद, विदुर जी उद्धव से कहते हैं, अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित रहते थे, जैसे कि वे उनकी ही अपनी भुजाएं हों। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे। जब वे भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की सहायता से अपने साम्राज्य पर शासन करते थे तो उनके साम्राज्य का ऐश्वर्य स्वर्ग के भी ऐश्वर्य की सभी कल्पनाओं को मात कर चुका था। उनकी असली बाहें तो भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन थे। इस तरह वे हर एक के ऐश्वर्य से बहुत आगे थे। दुर्योधन से इस ऐश्वर्य से ईर्ष्या करता था, अतएव उसने युधिष्ठिर को संकट में डालने के लिए अनेक चालें चली और अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराजा युधिष्ठिर एक बार फिर से अपने वेद साम्राज्य पर शासन कर सके तथा उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान तथा आदर भाव की पुनर्स्थापना की। महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा राजा द्वारा शासित साम्राज्य की यही शोभा है। श्रील प्रभुपाद की जय। धर्मराज युधिष्ठिर क्योंकि सदैव धर्म के पथ पर रहते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी भुजाओं की तरह उनकी सुरक्षा करते थे। ये अधर्म रूपी दुर्योधन चाहे उनसे कितनी ईर्ष्या करे तो, लेकिन फिर भी विजय आखिर वहीं होगी जहां पर धर्म होगा, क्योंकि कृष्ण वहीं होते हैं जहां धर्म होता है। तो सांसारिक दृष्टि से भले कभी लगता है कि अधर्म के द्वारा हमको उन्नति मिल रही है, प्रगति मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, लेकिन अंत में अधर्म का नाश होना ही है। ये भगवान ने प्रैक्टिकल करके बताया, जिस तरह से युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने विजय प्रदान करवाई। आगे विदुर जी उद्धव से पूछते हैं कि वे पूछते हैं युद्ध में क्या भीमसेन ने अपना क्रोध दुर्योधन पर उकार लिया था और उसने दुर्योधन को अपनी गदा से परास्त कर लिया, क्योंकि उनकी गदा से गदा को रणभूमि में कोई नहीं सहन कर सकता था। वे कहते हैं कि वा कृतागेश वगमात्यमर्षि भीमो विमतीर्घ तामं व्युमंचत यस्यांग्रिपातं रणभूर्ण सेहे मार्गं गधाया शरतो विचित्रं किंवा कृताग्रेष्वघमात्यमर्षि भीमो हिवा दीर्घ गतम गतमं युमुञ्चत् यस्यांग्रिपातं रणभूर्ण सेहे मार्गं गदाया शरति विचित्रं किं वा क्या वामन अथवा कृत यानी संपन्न किया अगेशु पापियों के प्रति अघम क्रुद्ध अति अमर्षि यानी अजेय और भीम यानी भीम ने अहिवत अहि कहते सर्प को काले सर्प की भांति दीर्घतमम दीर्घ काल से व्यमुंचत विमुक्त किया यस्य जिसका यस्यांग्रिपातम रणभूर्ण से अंग्रिपातम यानी पदचाप रणभूमि युद्ध भूमि में न से है कोई नहीं सह सकता मार्गम गदाया चरती मार्गम मार्ग गदाया गदा गदाओं द्वारा चरती चलाते हुए विचित्रम विचित्र अनुवाद कृपया मुझे बताइए क्या विशेले सर्पतुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रुद्ध बाहर निकाल दिया है गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि में भी सहन कोई भी सहन नहीं कर सकता था गदा चालन के उसके कौशल को रणभूमि भी सहन नहीं कर सकती थी जब वह उस पथ पर चल पड़ता था शिला प्रभुपाद की शिला प्रभुपाद जी कहते हैं भीम के बल से विदुर परिचित थे जब भी भीमसेन युद्ध क्षेत्र में होता तो पथ पर उसकी पदचाप तथा उसके अद्भुत गदा कौशल शत्रु के लिए असह्य होते बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया था विदुर की जिज्ञासा थी कि क्या उसने अभी तक सताए हुए विषैले सर्प की भांति अपना क्रुद्ध बाहर निकाला है जब सर्प लंबे समय से पनप रहे क्रोध के पश्चात अपना विष छोड़ता है तो शिकार जीवित नहीं रह सकता तो विदुर जी को पता तो था कि युद्ध हो गया है लेकिन अभी तक युद्ध के बारे में पूर्ण रूप से समाचार तो उनको नहीं मिला था तो इसलिए वो पूछ रहे थे क्या ये जो भीम फुंकारता रहता था लेकिन कभी डसने का अवसर नहीं मिला क्या दुर्योधन को डसकर समाप्त कर लिया और अपना क्रोध जो है वो दुर्योधन के ऊपर निकाल लिया अर्जुन के विषय में पूछते हुए कहते हैं कचित यशोधा रथयूथ पाना गांडीव धन्वो परतारितास्ते अलक्षितो यः चरकूट गूढ़ो माया किरातो गिरि शस्तुतोष अचित कचित यशोधा रथयूथ पाना गांडीव धन्वो परतारी रास्ते अलक्षितो यच्चरकूट गूढ़ो माया किरातो गिरीशस्तुतोष कचिद यशोदा कचिद क्या यशोदा अर्थात विख्यात रथ यूथ पाना महान रथियों के बीच में गांडीव धन्वो यानी जिसका धनुष गांडीव था उपरत अरी यानी जिसने शत्रुओं का विनाश कर दिया था आस्ते ठीक से तो है अलक्षितो यच्चरकूट अलक्षितो बिना पहचान हुए यत जिसका शरकूट गूढ़ बाणों से आच्छादित होकर माया किरात छद्म शिकारी जो कि कौन थे गिरीश अर्थात शिवजी तुतोष संतुष्ट हो गए थे अनुवाद कृपया मुझे बताएं कि अर्जुन जिसके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव आगे विख्यात हैं ठीक से तो हैं एक बार उसने ना पहचाने जाने वाले छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिवजी को बाणों की बौछार करके उन्हें संतुष्ट किया था श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शिव जी ने अर्जुन के बल की परीक्षा एक सुअर के शिकारी को लेकर हुए झगड़े के द्वारा ली थी उन्होंने शिकारी के छद्म वेश में अर्जुन का सामना किया अर्जुन उन्हें तब तक बाणों से आच्छादित करता रहा जब तक कि वे अर्जुन के युद्ध से तुष्ट नहीं हो गए। उन्होंने अर्जुन को पाशुपात अस्त्र दिया और आशीर्वाद दिया। यहाँ पर विदुर उसी महान योद्धा की कुशल क्षेत्र के विषय में पूछ रहे हैं। श्री प्रभुपाद की जय। तो इसके आगे भी भगवान के संबंधियों, भगवान के परिकरजनों और भगवान के प्रिय भक्तों के विषय में पूछते पूछते आगे वो भगवान के विषय में बहुत ही सुंदर रीति से पूछेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं आप सबकी सेवा और गुरु और गौरंग के आशीर्वाद से अच्छे से कर सकूं और अपनी साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।